श्रवण है तो उसमें जो है उसको याद आता है कि वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का उसने इस प्रकार से जो खंडन किया या अपने ढंग से गलत गलत व्याख्या की है उसका ही परिणाम उसको भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो अब हम समझेंगे कुछ और भी बातें इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो शुश्रूषु नहीं है और जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो उसको ये भगवद गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो अब कैसे उद्धार किया जाए, क्या उपाय है ऐसे लोगों के उद्धार का, उपाय क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने जो साक्षात कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु देखा कि अब कलयुग में तो ऐसे ही लोग हैं, अधिक से अधिक ऐसे ही लोग हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, हरे कृष्ण आंदोलन को उन्होंने फहराया, हरे कृष्ण आंदोलन, भगवान नाम का जो ना उन्होंने कीर्तन का प्रचार किया। तो कलयुग में इसलिए कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 तिरंग था, क्योंकि भगवद गीता सुनने के अधिकारी नहीं है ऐसे लोग, तो उनको जो है हरे नाम का ही एकमात्र उपदेश किया जा सकता। नाम की महिमा का भी उपदेश करने पे वो अपराध हो जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे कि वाल्मीकि मुनि थे, रत्नाकर नाम के जब डाकू थे, है ना, तो भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति थे, तो उनको जो है जब नारद जी मिले तो वो लूटना चाहते थे, तो नारद जी ने केवल एक बात पूछी कि तुम देखो ये जो काम कर रहे हो इसका जो पाप है इसका जो फल है वो कौन भोगेगा? बोले मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो भोगेंगे। किन के लिए कर रहे हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार है, उनके लिए कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम पूछो उनसे कि वही वो हिस्सा बांटने के लिए तैयार है इस पाप में। तो जब उन्होंने पूछा तो पत्नी है और बच्चे हैं, माँ बाप है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम क्यों हिस्सा बंटवाएंगे, तुम कर रहे हो तुम अपना भोगो, हमने थोड़ी तुमसे कहा कि तुम ये पाप करो। तब उनको लगा कि अरे मुझे तो ये सब जितना किया है मुझे सब भोगने पड़ेंगे पाप करने। तो भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी, अब उनको केवल यही चिंता थी कि मैं जो है ना इतने पाप कर्म जो है मुझे भोगने पड़ेंगे, इससे छूटने का उपाय क्या है, है ना। तो नारद जी ने भगवान की महिमा नहीं बताई क्योंकि द्वेष था, भगवान से द्वेष पैदा होता, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बरा बरा बोलो, है ना, बरा बरा बोलो। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं राम राम इसलिए उन्होंने सिखाया कि वो बहुत पापी थे, वो राम नाम नहीं निकलता उनके मुंह से, तो ऐसी बात नहीं है, पापी के मुख से राम नाम निकल सकता है चाहे जितना भी पापी हो, है ना, कोई पापी इतने पाप कर भी नहीं सकता है जितना कि भगवान का नाम पाप दूर करता है, है ना। लेकिन मुख्य कारण क्या था कि राम नाम नहीं बताया है, क्योंकि राम नाम बता दे तो ये भगवान का नाम है नहीं है? और भगवान में दोष निकालते वो, है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मरा मरा ये जो है ना मंत्र बोलो, तो मंत्र के रूप में उन्होंने मरा मरा उन्होंने जो दिया जिससे कि अपराध ना हो। तो इस प्रकार से जो है इस मरा मरा के द्वारा ही जब वो शुद्ध हो गए, क्योंकि वो तो राम राम निकलता ही है, जब शुद्ध हो गए तो फिर उनके अंदर श्रद्धा पैदा हुई भगवान के प्रति, है ना। और फिर बाद में जब नारद जी आए कभी तो उन्होंने फिर जो है मतलब प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि सबसे उत्तम जो है ना मनुष्य में कौन व्यक्ति है जिसमें सब प्रकार के गुण हो, सब प्रकार का जो है ना योग्यताएं हो। और फिर नारद जी ने संक्षेप में राम का चरित्र बताया और वाल्मीकि जी ने उसको 24,000 श्लोकों में फिर लिपिबद्ध किया, आदि काव्य कहलाया रामायण। लेकिन शुरू में जो है ना मरा मरा कहा, जैसे कि जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है तो उसको जो है अपराध ना हो किसी प्रकार का, तो मंत्र के रूप में। तो ऐसा है कि हम लोग भी लोगों को जो है ना कई बार मंत्र के ही रूप में बताते हैं कि भाई ये हरे कृष्ण महामंत्र है। कोई एमपी थे, कोई सज्जन एमपी थे, तो जो धर्म सिंधु प्रभु हैं तो उनके वो ससुर लगते हैं, तो उनके ऑफिस में हम गए तो उन्होंने भी भगवान कई प्रकार से निंदा करना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि देखो भाई, हम इस काम से तो आए ही नहीं है, हमें इस विषय में कुछ बात ही नहीं करनी है, आप क्यों बात कर रहे हैं? तो फिर बोले, अरे आप तो फिर जो है अब पलायन कर रहे हो, भाग रहे हो, डर के भाग रहे हो, मैदान छोड़ के जा रहे हो। हमने कहा कि देखो, हम आपसे एक ही प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो है ना एक मंत्र दे रहे हैं, इसका आप जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये इसमें जो है ना, जो ये राम जो है ना, ये कौन से राम है? राम ने भी वो दोष निकालने शुरू कर दिए और कृष्ण ने भी दोष निकालना शुरू कर दिए। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, इसमें जो है ना कोई नाम नहीं है, ये केवल मंत्र है, आप इसको केवल मंत्र के रूप में जाप करना, इसमें कोई मतलब भगवान की बात नहीं है, भगवान का नाम नहीं है इसमें कोई भी। तो तैयार हो गए कि हाँ, तब हम तैयार हैं। तो तैयार हो गए वो। तो कलयुग में जो ना ये हरि नाम का जो प्रचार है, ये वास्तव में सफल हो रहा है। यद्यपि लोग इतने मतलब गिरे हुए हैं कि वे भगवान को नहीं मानना चाहते और भगवान की बात नहीं मानना चाहते बिल्कुल, लेकिन अगर आप मंत्र के रूप में आप देते हो कि ये जो ना शब्द ध्वनि है, इसको आप सुनो, तो इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं और इससे फिर जो है ना उनके अंदर श्रद्धा पैदा होती है और फिर भगवान के सामने वो फिर झुकते हैं और भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के संदेश को फिर वो सुनते हैं। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं उन लोगों को कि भाई, इस मंत्र से जो ना आपका मानसिक तनाव दूर होगा तो ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर तो वो यूज करते ही हैं, बहुत मानसिक तनाव है, नींद नहीं आती है, तो वो जो ना इस रूप में वो इस मंत्र को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना ये सफल हो रहा है हरिनाम प्रचार। तो गिरधारी स्वामी महाराज भी जो ना एक इस्कॉन के सन्यासी हैं, तो कह रहे थे कि यद्यपि लोग जो है ना भगवान की बात सुनकर के हजारों की संख्या में दूर भागते हैं, भारत में तो क्या है, अगर भगवान की बात करो तो हजारों की संख्या में लोग पास आते हैं, और चीन में क्या है, अगर भगवान की बात करो तो हजारों की संख्या में लोग दूर भागते हैं। तो वहां पर भी जो ना ये हरि नाम का जो प्रचार है वो सफल हो रहा है ना। क्या करते हैं, क्या बताते हैं, उनको कुछ आसन सिखाएंगे, आओ आओ हम लोगों को कुछ आसन सिखाएंगे। तो आसन जो ना सीखने के लिए तैयार है, क्यों, इस आसन से उनके कुछ बीमारियां ठीक होगी और स्वास्थ्य ठीक होगा, तो इसको सीखने के लिए तैयार होते हैं। फिर आसन सिखाते सिखाते उनको कहते हैं कि इस मंत्र को जो है ना आप जाप करो, ये मंत्र क्या है, ट्रैंक्विलाइजर, मानसिक तनाव को दूर करेगा, है ना। तो इसको वो स्वीकार करते हैं, हरे कृष्णा, भगवान वो जानते भी नहीं कि भगवान का नाम है ये कृष्ण या राम क्या है। तो इस तरह से उनको जो है जाप कराते हैं, और जाप करते करते जब उनके अंदर जो वो श्रद्धा पैदा हो जाती है, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं, तो फिर उनको जो है ना धीरे धीरे भगवद गीता की बातें सिखाना शुरू कर देते हैं और फिर वो उनको भक्त बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से चीन में भी भक्त बन रहे हैं, है ना। तो ये है, तो प्रभुपाद जी का भी जो ना श्रीमद् भागवत में दो तात्पर्य हैं, जिनसे पता चलता है कि जो भगवद गीता के जो सिद्धांत है वो हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है, जो निम्न स्तर के लोग हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंध के दसवें अध्याय का 18वें श्लोक का तात्पर्य है। मैं कई बार इसको बता चुका हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जड़ भरत जैसे साधु पुरुष, सामान्य शब्द नहीं बोलते हैं, मतलब वही भगवद गीता के जो शब्द हैं, सामान्य शब्द नहीं है। जड़ भरत जैसे साधु पुरुष वे जो कुछ भी कहते हैं वह योगियों तथा सिद्धों द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। भगवद गीता है ना, बड़े बड़े योगी और सिद्ध लोग ही स्वीकार करते हैं, सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष में यही अंतर है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए, जो श्रोता है वो, है ना। भगवद गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र थे। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानियों को ही उपदेश देते हैं। शूद्रों वैश्यों स्त्रियों अज्ञानियों, मतलब वही मतलब है कि जो भक्त नहीं है तपस्वी नहीं है, ये मतलब नहीं है कि किसी शूद्र को स्त्री को ज्ञान का उपदेश ना दिया जाए, ये मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही मतलब है, कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को गीता का उपदेश देना घातक भी होता है, घातक है, बहुत घातक है, क्योंकि वो अपराध कर बैठेगा और अपने को नरक में रास्ता बना देगा, अपना रास्ता नरक में बनाएगा। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया। अमोघ साधन है, अमोघ साधन का मतलब है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित लाभ देगा। सामान्य जनसमूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न है, शूद्र से भी ज्यादा निम्न है सामान्य लोग, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं, तब समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप को स्वीकार किया है। तो ये हरे कृष्ण का कीर्तन सामान्य जन समूह के लिए है, है ना। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। तो मतलब हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं उनसे ही आशा की जाती है कि वे शुद्ध हो चुके हैं और वे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के उपदेश को ग्रहण करें, आशा की जाती है। स्त्री शूद्र तथा द्विजबंधु जैसे भौतिकवादी प्राणी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते तो भी उन्हें वैष्णव के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। और फिर श्रीमद् भागवत का पांचवें स्कंध के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक का तात्पर्य, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है वो मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। यानी ये जो भगवान का उपदेश है तो ये वही है, मुझे मन को लगाओ मेरे भक्त बनो, यानी कृष्ण के गुण और लीलाओं को श्रवण करना। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति सुहृतताम। जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमन को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति, वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता है, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, इसीलिए हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण है कथा को लोग श्रवण नहीं कर पाते हैं, है ना। जब तक कोई व्यक्ति उसका चित्त पवित्र नहीं होता है तब तक वो कृष्ण कथा को नहीं श्रवण कर पाता है। तो हरे कृष्ण का कीर्तन, और फिर कीर्तन के साथ में मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं सब लोग मिलकर के, इससे क्या है कि उनको रुचि पैदा होती है, है ना। तो जैसे वो डिस्को म्यूजिक होता है तो उसी प्रकार से इसमें भी करते हैं, तो जो शब्द ध्वनि है वो पवित्र करती है उनको। लेकिन इसमें मिलावट करते हैं संगीत की कि चलो किसी भी प्रकार से, है ना, जैसे दवाई में क्या है टॉफी मिला दें, है ना, तो बच्चा जो है ना वो दवाई लेता है। तो इसी प्रकार से, तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है और वह श्रीमद् भागवत भगवद गीता श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बात भगवान कह रहे हैं कि नहीं बताना ऐसे लोगों को, इसमें भगवत गीता तो फिर श्रीमद भागवत भी तो उसमें शामिल हो गई, क्योंकि जहां पर कृष्ण के उपदेश समाप्त होता है गीता में वहीं से श्रीमद भागवत शुरू होती है ना। और फिर चैतन्य चरितामृत और आगे का ग्रंथ है ना। तो हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः क्या श्रीमद भागवत भगवत गीता से चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है, इस प्रकार वह भौतिक दूषण से अधिक अधिक पवित्र होता जाता है। श्रीमद भागवत में 1:2:18 कहा गया है, नष्ट प्रायश्च भद्रेश नित्यम भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। निरंतर श्रीमद भागवत का श्रवण करने तथा निष्काम भक्ति की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है। अभी सेवा भाव नहीं है, द्वेष भाव है ना, तो उसको नहीं बताना। फिर सेवा भाव स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान के यशस्वी चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिरंतन दास के रूप में जो भगवान का विभिन्न अंश होता है अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। भक्त द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजो तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाते हैं, है ना। तो रजोगुण तमोगुण ही तो है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि उसको नहीं बताना। तो रजोगुण तमोगुण में भरे हैं लोग और वो सतोगुण में ही सारे कार्य करता है, उस समय से प्रसन्नता होती है और वो श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। सतोगुण में आता है कोई व्यक्ति तो फिर ईर्ष्या नहीं रहती भगवान के प्रति। अगर कृष्ण भगवान है तो वो जान लेता है कि भाई कृष्ण भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं तो जान लेता है कि मैं भगवान नहीं हूं। तो उसको सही जानकारी चाहिए और सही जानकारी मिलती है तो वो तुरंत स्वीकार कर लेता है, द्वेष नहीं होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का भी मत है कि मनुष्यों को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। तो ये भी जरूरी है कि जब तक कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करेगा तब तक मनुष्य का जीवन सफल नहीं है उसका। लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि नहीं बताना, इसका मतलब यही है कि शुरू में उसको जो है कुछ तपस्या के नियम बताए है कि नहीं। और तपस्या के रूप में उसको क्या बताओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, ठीक है ना, डेली माला जाप करो। कितना करोगे, एक माला करोगे, दो माला करोगे, ऐसे इस तरह से हम बताते हैं। अब इस श्लोक में कुछ और भी हम बातें समझ सकते हैं। जैसे भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो जो तपस्वी नहीं है वो इसका ये भी अर्थ निकालेगा क्या कि भाई ठीक है दुनियादारी छोड़ करके साधु बन जाओ। अब वो भगवान की शरण भी नहीं आ रहा है, भगवान के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इस बल पर जो ना वो क्या है गलत फायदा उठाता है इस श्लोक का, इस शिक्षा का। वो क्या सोचता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है भाई हम दुनिया के सब कर्तव्यों को छोड़ करके क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, है ना। अब ना यहां के रहे ना वहां के रहे, यहां पर कृष्ण के जो बनाए नियम उनका भी पालन नहीं करना, है ना, और वहां जो जो संसार में भी जो है ना जो कर्तव्य है बताए गए हैं उनका भी पालन नहीं करना, है नहीं। तो इसके लिए भी जो ना भगवान कह रहे हैं कि नहीं बताना, है ना। तो ऐसे बहुत से सहजिया लोग होते हैं, है ना, मन मनाभो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो वो जो है ना कृष्ण मन लगाते हैं तो गोपी भाव से जो ना वो नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं, लेकिन कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करते हैं कि जो भक्ति हो के जो वैदिक भक्ति के नियम है उनका पालन करें। नहीं नहीं हमें कोई नियम का पालन नहीं करना, क्यों, सब धर्मान सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, है ना। तो वो सब प्रकार के अधर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना। नहीं हम किसी धर्म का पालन नहीं करते, हम तो कृष्ण के प्रति गोपी भाव में हम कृष्ण की शरण ले रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये बहुत जो है ना जरूरी है, भगवान ने तुरंत ही जो ना जो शिक्षा दी है सर्वगुहितम जो शिक्षा दी है उसके तुरंत बाद जो है ना भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बताना इस बात का, बिल्कुल गलत फायदा उठाएंगे। तपस्या बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, भगवान यज्ञ तपस्या के भोक्ता है, तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति नियमों का पालन करे मनुष्य के जीवन में। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की है, तो अगर वो तपस्या धर्म के अनुसार नहीं है तो फिर उसको जो ना मतलब इतना बड़ा वरदान क्यों प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा? हाँ, और अत्रि मुनि की तपस्या है तो वो भगवान को नहीं जानते हैं और उससे उनको वरदान प्राप्त हुआ? हाँ, अच्छा ठीक है। तो पहले हिरण्यकशिपु की हम चर्चा करते हैं। हिरण्यकशिपु की जो तपस्या थी वो किसमें थी? तमोगुण में। तमोगुण में मतलब विनाशकारी तपस्या है ना। तमोगुण में तपस्या होती है, भगवान बताते हैं तमोगुण में तपस्या कैसी होती है। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या क्रीड़े तपः, मूढ़ मूर्खता का सिद्धांत ना कोई व्यक्ति पकड़ लेता है। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या, अपने को पीड़ा पहुंचाते हुए कोई तपस्या करता है, पर सांत्वनार्थम वा, या दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए। तो मूढ़ क्या है मतलब गलत सिद्धांत को पकड़ लिया हिरण्यकशिपु ने। गलत सिद्धांत क्या था कि कोई भी ईश्वर बन सकता है अपनी तपस्या से। तो मैं भी शाश्वत हूं, काल भी शाश्वत है, तो चाहे जितने जन्म लग जाए मुझको जो है ईश्वर बनना है। एक गलत सिद्धांत है। अब दूसरा गलत सिद्धांत क्या है कि ब्रह्मा जी ईश्वर है, ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से ईश्वर बन गए। ये दूसरा गलत सिद्धांत है कि ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से ईश्वर बन गए। पर तीसरा गलत सिद्धांत क्या है कि अपनी तपस्या से मुझको ईश्वर का पद पाना है, यानी ब्रह्मा जी का पद पाना है। अब अपनी तपस्या से तुम ब्रह्मा जी का पद पाओगे तो ब्रह्मा जी को गिराओगे, तो फिर क्या मतलब हुआ ईश्वर का? फिर ये सिद्धांत बनाया कि ब्रह्मा का पद जो प्राप्त कर लेता है वो गिरता नहीं कभी। अब तुम ब्रह्मा जी को तो गिरा रहे हो ब्रह्मा का पद पकड़ के, और फिर ये भी सोचते हो कि ब्रह्मा के पद से कोई गिरता नहीं, और बैकुंठ से गिर जाता है। बैकुंठ से लोग गिरते हैं और ब्रह्मा के पद को पकड़ कोई गिरते नहीं। तो सब गलत सिद्धांत, और गलत सिद्धांत को लेकर के तपस्या शुरू कर दी उसने। और फिर क्या विनाशकारी तपस्या कि इस तपस्या में ब्रह्मा का पद पालूंगा तो मैं फिर जो है ना सब जो ना नियम सृष्टि के बदल दूंगा, जितने मतलब पाप कर्म है वो क्या हो जाएंगे? पुण्य कर्म हो जाएंगे। और जितने पुण्य कर्म है वो सब पाप कर्म हो जाएंगे। ये सब हरे कृष्णा वाले जो गीता पढ़ते हैं इन सबको नरक भेजूंगा। शिखा धारण करते हैं और जो है तिलक लगाते हैं, हरे कृष्ण की माला का जाप करते हैं, इन सबको नरक में भेज दूंगा। और जितने भी शराबी व्यभिचारी जुआरी सब हैं वो सब जाएंगे स्वर्ग में। तो ये जो ना उसकी तपस्या, इस प्रकार की तपस्या थी। तो अब वो इतनी घोर तपस्या की उसने कि पहले तो ऐसा लगा कि भाई खत्म हो गया है, फिर खाया खाता पीता कुछ नहीं था, और जो है ना शरीर का खून और मांस सब जो है ना दीमकों ने खा लिया, दीमक खा लिया कुछ नहीं, और फिर उसके ऊपर मतलब घास फूस जम गई, खत्म। देवताओं ने सोचा कि खत्म हो गया अपने बुरे कर्म से, चलो तो उसके जो है ना स्थान में आक्रमण कर दिया, और कयाधु जो उसकी पत्नी थी उसको कैद कर लिया। लेकिन फिर नारद जी की कृपा से तो कयाधु को छोड़ दिया, नारद जी जो है कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। लेकिन बाद में आगे चल करके फिर क्या हुआ कि तो उसके सिर से अग्नि निकली, और वो अग्नि जो है ना ऊपर के लोगों को जलाने लगी। हाँ, ये तो प्रलय कर देगा। अब सब देवता आए ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु अब आप देखो क्या करना चाहिए, ये तो जो है ना भस्म कर रहा है, सब लोगों को भस्म कर रहा है, और ये ब्रह्मा का पद भी पाना चाहता है, आपका पद पाना चाहता है, क्या करें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे तो बड़ा चक्कर कर दिया, इसको इसकी तपस्या बंद करानी पड़ेगी। अरे भैया तपस्या बंद कर दे, बोलो क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी से तो कह नहीं सकता था कि मुझे ब्रह्मा का पद पाना है, क्योंकि फिर तो सीधी बात होगी तुमको गिराना है। तो ब्रह्मा जी के सामने तो फिर बोला, नहीं मुझको अमर बना दो, कोई भी जो ना आपकी सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके, आप अमर हो, अमर बना दो, ये करो वो करो, है ना। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसको वरदान दे दी कि ठीक है। तो इस तरह से जो ना ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा उसको, है ना। तो ये जो ना तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार से तपस्या करते हैं और विवश करते हैं, किसी भी देवता को विवश करते हैं कि वो वरदान दे। जैसे कि मृगासुर था तो अपने शरीर का मांस काट काट करके डाल रहा था अग्नि में। अब शंकर जी हैं, जब नहीं प्रसन्न हुए, 7 दिन तक अपने शरीर का मांस काट काट कर डालता रहा। फिर शंकर जी जब नहीं प्रसन्न हुए तो अपना सिर काट करके डालना चाहा अग्नि में। तो शंकर जी बोले, अरे भैया मत करो ऐसा, बोलो क्या चाहते हो, है ना। तो तुरंत उसने वरदान मांगा, जिसके सिर में हाथ रख दूं वही मर जाए, खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं ऐसा वरदान नहीं, तो मैं अपना सिर काट लूंगा। हाँ देखो, तो अपना सिर काटने के लिए तैयार, या तो ये वरदान चाहिए मुझे और नहीं तो मैं अपना सिर काट लूंगा। तो ये तपस्या, तमोगुणी तपस्या, अपने या तो अपना विनाश करे या फिर दूसरों का विनाश करे, निकलना विनाश, है ना। तो ये जो ना इस प्रकार की तपस्या होती है, तमोगुणी तपस्या होती है। तो ये तो जो ना एक जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। अत्रिमुनि की जो तपस्या थी तो उसमें क्या है कि उनका ये भाव था कि जो भी जगत के ईश्वर हों वो हमें अपने समान पुत्र प्रदान करें। तो ईश्वर के बारे में कोई विशेष, मतलब उनको विशेष ज्ञान नहीं था ईश्वर का, है ना। तो ईश्वर का केवल इतना ही ज्ञान था कि भाई जो वरदान दे सकता है वो ईश्वर है, खाली इतना ही अगर उनके अंदर विचार है। ईश्वर उसको कहते हैं भाई जो किसी को कोई भी वरदान दे सके। तो भाई सांप दे करके और सांप देने में और वरदान देने की शक्ति तो तीनों में है, ब्रह्मा जी में भी है, विष्णु में भी है और शिव जी में भी है। तो तीनों आए प्रकट हुए, है ना। तो इस तपस्या को विनाशकारी तपस्या तो नहीं है सात्विक, इसको तो सात्विक कह सकते हैं। सात्विक तपस्या भक्ति तो नहीं है, लेकिन तपस्या तो कह सकते हैं सात्विक है, है ना। तो इससे कोई व्यक्ति शुद्ध होता है ना? तो तपस्या का मतलब यह है कि आत्म शुद्धि के लिए वो जो है ना तपस्या कर रहे थे। इनका प्रश्न तो क्या भगवान ने दोनों की तपस्या भोगी। भगवान तो जो है ना ये समझिए कि जितनी भी तपस्या है तो वो आखिरकार तो भगवान को ही प्राप्त होती है हर प्रकार की तपस्या, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान ले उसको शांति प्राप्त होती है, है ना। ज्ञात्वा माम शांति मिल सके, ये जान करके जो है ना उसको शांति प्राप्त होती है। जैसे यज्ञ भी जो है ना, तो भगवान कहते हैं ये अन्य देवता भक्त है यंदे सर ध्यान देता, अन्य देवताओं के भक्त हैं वो उनकी भी पूजा करते हैं, ते भी मामे कौन थे यजन दे विधि पूर्वक, वो मेरी ही तो पूजा कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। न तो माम अभी जानती तत्व ना तस्वी, तत्व से इस बात को नहीं जानते इसलिए वो गिरते हैं। जैसे जब तक कोई व्यक्ति नहीं जानता इस बात को तत्व से, तो वो फिर जो है गिरता है। जो तपस्या है जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है तो जो है ना वो उससे जो है उसकी उन्नति होती है। और जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है अपने लाभ के लिए, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, है ना। और कोई प्रश्न किसी का, इनका प्रश्न की गुहितम ज्ञान भगवान ने जो 63वें श्लोक में बताया है उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है, तो इसमें क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा है कि सर्व गुहितम भूय श्रवण में परम मत है, कि मैं तुम्हें ये सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है फिर से बताऊंगा, है ना। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा एकदम तुत गुहितम प्रवक्ष्यामि अनुसूय, कि जो गुहितम ज्ञान है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम अनुसूय हो, मतलब तुम ईर्ष्या नहीं करते मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। तो नवीन अध्याय में भगवान ने बता दिया अंतिम श्लोक में, तो अब 18वें अध्याय में फिर भगवान बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा, और क्यों बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे हो, इसे तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा, है ना। वृंदराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
गौर हरे गौर हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे।